ध्रुव को प्रहलाद को पिता ने भजन करने से रोका था, लेकिन प्रहलाद की भगवान में प्रीति थी। सत्संग सुना था, कयादु के गर्भ में रहते रहते 5 महीने का प्रहलाद था माँ के गर्भ में, तो उसकी माँ नारद जी के आश्रम में रही थी। माँ तो सत्संग सुनते झोंका खा लेती थी, लेकिन वो माँ के अंदर बैठा हुआ जो प्रहलाद था उसको सत्संग के संस्कार पड़े। 11 वर्ष का हुआ तो पिता ने उसे रात को निगरानी करने के लिए, गिश्त करने के लिए सिपाहियों के साथ भेजा। तो देखा कोई निभाड़ा, किसी कुम्हार ने निभाड़ा, तो आग लगाई थी, घड़े पका रहा था मटके, तो अग्नि देखकर वहां गए कि क्या हुआ, आग लगी है क्या। देखा तो कुम्हार प्रार्थना किए जा रहा है कि परमात्मा अब मेरे हाथ की बात नहीं, और तू चाहे तो तेरे लिए कठिन नहीं, भगवान मैं तो नादान हूं, मैंने तो भूल की, लेकिन उस भूल को तू सुधार दे, तू दया कर, मैं जैसा हूं तैसा हूं लेकिन तेरा हूं, तू रहम कर, तू अगर चाहे तो सब हो सकता है, उन निर्दोष बच्चों को तू ही बचा सकता है। प्रहलाद ने कहा क्या बात है, क्या बोल रहे। बोले निभाड़े में मटके बनाए थे हमने, मटके बनाए थे, उन मटकों में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, सोचा कि जब मटके पकाएंगे तो ये बिल्ली के बच्चों को निकाल देंगे, उचित जगह पर रख देंगे, लेकिन भूल गए और बीच निभाड़े के बिल्ली के बच्चे रह गए और निभाड़े को आग लगा दी गई। अब याद आया है कि अरे वो बेचारे नन्हे मुन्ने मासूम जल के मर जाएंगे, अब हमारे हाथ की तो बात नहीं, चारों तरफ आग ने लपटें ले ली, लेकिन वो अगर चाहे तो हमारी गलती को भी सुधार सकता है, बचा सकता है उन बच्चों को। प्रहलाद ने कहा ये क्या पागलपन की बात, चारों तरफ आग और बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं। बोले वो परमात्मा कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, वो जो चाहे वो कर सकता है, उससे अलग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, थाम दे किसी वस्तु को थाम भी सकता है। ये जरा सा बीज देखो क्या हरा भरा कर देता है, फिर केले कैसे लगा देता है, ये केल में एक पानी की बूंद में कैसा राजा महाराजा खड़ा कर देता है। वही पानी की बूंद मनुष्य बनकर रोती है, हंसती है, गाती है, आती है, और बॉय कट होता है, लेडीज कट बनता है, क्या क्या कट बनता है, वही मनुष्य हर वही कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अपना कभी पराया, ऐसे करके मेरा तेरा करके ढगले लगा के फिर राख की मुट्ठी छोड़ के भाग जाता है। ये क्या उसकी लीला का परिचय नहीं है, उसकी चमत्कार नहीं है। समुद्र में बड़वा नल रहती है, वो पानी से बुझती नहीं, और पेट में जठराग्नि रहती है, वो शरीर को जलाती नहीं। गाय सूखा घास खाती है और चिकना चिकना मक्खन घी दूध और दही बन जाता है उसी घास का रूपांतर होकर, और सर्प दूध पीता है जहर बना देता है, माँ रोटी खाती है और बच्चे के लिए दूध बन जाता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो दूध बंद हो जाता है, क्या ये ऑटोमेटिक सिस्टम उसकी कितनी है। उसकी लीला अपरंपार है, उसकी महिमा अपरंपार है, वो अगर रहमत कर दे तो ये बालक दिल्ली के बच्चे बच सकते हैं। बोले कैसे बचते हैं, जरा जब ये निभाड़ा खोलो ना तब मुझे बुलाना। कुमार ने कहा कि राजकुमार निभाड़ा खोलूं तब क्या तुम्हें बुलाऊं मैं, ये तो मटके का निभाड़ा है, कोई ईंट का नहीं, ईंटवाड़ा के 3 दिन चाहिए अग्नि, आप सुबह आना, आप आएंगे फिर मैं खोलूंगा। सुबह को पहला जाए और उसने भगवान का स्मरण करते अंतर्मुख होकर उस अंतर्यामी परमात्मा को प्रार्थना करते हुए निभाड़े के चाहूं और से मटके हटाए, और जब बीच के मटके तक पहुंचा तो देखा 4 मटके कच्चे रह गए और उनमें से बच्चे म्याऊ म्याऊ करते छलांग मार के जिंदे बाहर निकले। तो प्रहलाद ने सत्संग तो सुन रखा था, अब स्मृति आ गई कि वो सार तो वही है। प्रहलाद का मन भगवान में लग गया, संसार से वैराग्य हो गया, मन भजन में लग गया। मन भजन में लग गया तो महाराज विरोध हुआ, लेकिन विरोध होते हुए भी भजन करता है। फिर पिता ने हिरण्याकश्यपु ने उसे धमकाया, डांटा, जलादों से धमकवाया, पर्वतों से धकेलवाया, फिर भी प्रह्लाद की श्रद्धा नहीं टूटी। श्रद्धा होना कठिन है, लेकिन श्रद्धा हो जाए तो टिकना कठिन है, और श्रद्धा टिक गई तभी भी तत्वज्ञान होना कठिन है। जय जय, बिना तत्वज्ञानी गुरुओं के। महाराज प्रह्लाद को पिता ने पानी में फेंकवाया, तब भी देखा कि जो हरी बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है, क्या मैं उसका बच्चा नहीं? भगवान के शरण हो गए। पानी में फेंकवाया, डूबा नहीं, पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन मरा नहीं। आखिर लोहे के थंभे को तपाकर हिरण्याकश्यपु ने कहा, तू बोलता है वो मेरा भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वत्र है, तो कहाँ है तेरा भगवान? दिखा, सब जगह है, सर्वत्र है, और जहां चाहे जहां से भी प्रकट हो। तो जहां ये लोहे के थंभे में तेरा भगवान है तो इसको आलिंगन कर। और प्रह्लाद ने सच्ची भावना से, तीव्र भावना से आलिंगन किया और कड़ाहट भूस करके थंभा फट निकला और उसमें से नरसिंह अवतार का प्रागट्य हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब भोगी का प्रभाव भक्त के प्रभाव को दबाता है और भोगियों का प्रभाव बढ़ जाता है, जोर जुलम बढ़ जाता है, तब तब भगवान चाहे कहीं से किसी रूप में से प्रकट होने को समर्थ है। भगवान तो प्रकट हो गया, लेकिन भगवान के तत्व को जानना कठिन है महाराज। जय जय, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकश्यपु को उम्र पे बैठकर गोद में लेकर पूछा के बोल, दिन है के रात है, सुबह है के शाम? न दिन है न रात है, न सुबह है न शाम है, ये संध्या है। मनुष्य हूं के राक्षस हूं के असुर, न मनुष्य न पशु। जो भी वरदान मांग रखे थे, इससे न मरूं, इससे न मरूं, उससे न मरूं, वो सब के सब वरदान के बावजूद भी ऐसा रूप भगवान ने धारण कर लिया कि नखों से, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पुरुष से मरूं, न स्त्री से मरूं, न पुरुष न स्त्री न नान्यतर, एकदम नरसिंह अवतार, एकदम एक्स्ट्रा वीआईपी कोटा का अवतार, वो प्रकट कर सकते। ऐसा जिस भक्त के लिए भगवान अवतार धारण कर सकते हैं, ऐसे भक्त प्रह्लाद को देखो, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो उसकी श्रद्धा कैसे डाउन हो जाती है, अब देखना। ये आध्यात्मिक विष्णु पुराण की कथा में से मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हिरण्याकश्यपु को फाड़ फेड़ भगवान ने सदगति दे दी, राज प्रह्लाद को मिला, भगवान अंतर्धान हो गए। समय जाने के बाद शुक्राचार्य, देवों के जो, असुरों के जो आचार्य थे, उन्होंने प्रह्लाद को बुला के, अरे प्रह्लाद, क्या तूने बोला था विष्णु को कि मेरे पिता को मार डालो? बोले, मैंने पिताजी को मारने के लिए तो नहीं कहा था, वो तो उनके जैसे वरदान लिए दिए गए थे, ऐसे मैंने मारा। तो बोले, तूने तो कहा नहीं, फिर तेरे बाप को क्यों मारा उसने? अगर उनकी तुम्हारे में पूरी प्रीति थी तो तेरे बाप की बुद्धि सुधार देते, तेरे बाप को मारा क्यों? देखो, श्रद्धा तो है प्रह्लाद की तीव्र, लेकिन श्रद्धा को हिलाने वाले लोग जब मिल जाते ना तो श्रद्धा छू हो जाती, और ऐसे हजारों हजारों मिलते ही रहते हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ऐसे हमको हिलाने वाले मिलते ही रहते हैं। एक साधन में से श्रद्धा हिलाना, भगवान में से, गुरु मंत्र में से, गुरु में से श्रद्धा हिलाने का कोई ना कोई अभागा आदमी हमको मिलता ही रहेगा, नहीं तो हमारा मन ही विरोध करेगा, मिलेगा तर्क वितर्क सोच के श्रद्धा को हिलाएगा, इसलिए श्रद्धा टिकना कठिन। प्रह्लाद को वो दैत्यों का गुरु कहता है, कोई तत्वज्ञानी नहीं है लेकिन व्यवहार कुशल है, संजीवनी विद्या जानता है, प्रभाव तो है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के सिवाय का प्रभाव किस काम का? तूने जब कहा नहीं और तेरे बाप को मार डाला और फिर भी तू उसको पूजता है, कैसा तू मूर्ख है? इतनी श्रद्धा, अंधश्रद्धा है? किसी को कह दो नहीं इतनी श्रद्धा अंधश्रद्धा, वो बोलेगा नहीं अंधश्रद्धा नहीं, मेरी सच्ची श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा तो बोलेगा, लेकिन तुम्हारा अंधश्रद्धा बोलना भी उसके श्रद्धा के नींव को तो जरा झकझोर देगा। शब्द असर करते, देर सबेर असर करते। फिर दो दिन बीते फिर बातचीत में, अच्छा तेरी श्रद्धा है, विष्णु भगवान ने मार डाला पिता को, तो पिता की मृत्यु होने के बाद भी तेरे को ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया? इतना भी तेरे पास अकल नहीं है? इतनी भी तेरी समझ नहीं है? देखो कैसे कैसे उलट रहे हैं खोपड़ी को। बोले हाँ ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करें। हिला, भीतर से हिला, जयराम जी की। ठीक तो नहीं किया लेकिन अब क्या करे, भगवान है। अच्छा तो नहीं हुआ लेकिन अब क्या करे, भगवान है। समझो श्रद्धा के परसेंटेज डाउन हो गए, क्या करे, भगवान छे गुरु छे, चलाई दो चलाई दो। एटले तमे त्यांथी तो हली गया, चलाई देवू पड़े छे। चलो शू करे छे, जे कहो बापू छे, शू आपड़ा गुरु छे, जवा दो जवा दो। तो तुम माना बड़ी कृपा कर रहे हो, अपने अहम के दायरे को मजबूत करके क्षमा कर रहे हो गुरु को। तुम मिट नहीं रहे हो गुरु के कृत्य में, भगवान की दृष्टि में तुम अपने मैं को मिटा नहीं रहे हो, लेकिन तुम मैं को सुरक्षित रखकर भगवान या गुरु को माफ कर रहे हो। जयराम जी की। ध्यान रहे ये सूक्ष्म बातें हैं तत्व ज्ञान में, साक्षात्कार में। कौन सी बातें आकर हमारे जैसे उदी घुन लग जाती है, लगती जरे से बारीक उदही है लेकिन कितने मजबूत लकड़ को मिट्टी में मिला देती है। ऐसे ही ये जो बातें हैं ना हिलाने वाली, लगती तो छोटी छोटी सी लेकिन परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार के करने के सामर्थ्य को खाकर नष्ट कर देती है। ये बेवकूफी ऐसी होती है, इसीलिए साक्षात्कारी महापुरुष जल्दी से तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि साधक है बेचारा बाज और लोक है शिकारी, किसी न किसी भाव से किसी न किसी वातावरण से उसको गिरा देते। महाराज फिर एक दो दिन बीता के, अच्छा विष्णु ने ठीक नहीं किया कि अभी भी तेरे को लगता है कि विष्णु ने बाप को मार डाला ठीक हो गया, मेरा बाप मर गया विष्णु के हाथ से तो अच्छा हुआ, ऐसा लगता है क्या तेरे को? बोले नहीं ये तो ठीक नहीं हुआ, उनकी बुद्धि बदल देते तो ठीक था, मार डाला ये ठीक नहीं था। तो अब देखा शुक्र ने कि हाँ अब हिला है तो और थोड़ी कटु बात हो। श्रद्धा हिलाने वाले पहले तो गोल गोल थोड़ी सी हिलाएंगे, फिर जितने तुम हिलते जाओगे ना बोधू हो त्या वागे। जे श्रद्धा हलवानी वातो सांभळे एने ज बीजा संभळावे, पण जो सुनने को तैयार नहीं हो तो वो बोले ये तो हूँ अमस्तो कहतो तो कि मारी आगर तुम्हारा इष्ट नि मारी आगर बापू मारी आगर फलाणो तुम्हारी बहु निंदा करतो तो, पण मैं एने कहीं दाद ना आप्यो, आऊ आऊ कहतो तो, आऊ आऊ कहतो तो, पण सांभळवानी तारा में योग्यता हती एटले तू सांभळी शक्यो, एटलू बोधू हतू अने ऊंडाण में हलावशे तने। गुरु महाराज आपके लिए ये ऐसा ऐसा कहता था लेकिन मेरे को तो बड़ा दुख हुआ, ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, तो सुनने की तेरे में तो कचास ठीक है, उसीलिए वो सुना सका। रामकृष्ण परमहंस के दर्शन करने कोई साधक गया, उसका चेहरा सुकड़ा हुआ था। रामकृष्ण देव उसी समय समाधि से उतरे थे, निर्विकल्प समाधि से। पूछा के क्यों मुरझाया हुआ है, क्या बात है? कि गुरु महाराज मैं नाव में बैठ के आ रहा था ना तो कुछ लुफंगे लोग आपके लिए बुरा बुरा बोलते थे। बोले क्या है? बोले ऐसा बोलते थे लगन किया है लेकिन कोई बाल बच्चा नहीं है, पत्नी से बात नहीं करते, तो ये नान्यतर जाति में है, ऐसा वैसा गंदा बोलते थे, मेरे को बड़ा दुख। रामकृष्ण कहा कि धिक्कार है तेरे को, शास्त्र में तो कहा है कि गुरु की माता पिता की कोई निंदा करे तो उसकी जीभ काट लेना चाहिए, यह तो सुनना नहीं चाहिए, कान में उंगलियां डाल देना चाहिए, और तू मेरी निंदा सुनकर फिर मेरे दर्शन करने को आया है, तेरे को धिक्कार है, तेरे को क्या लाभ होगा? अब रामकृष्ण देव जैसे निर्विकल्प समाधि से उतरे हैं, उन महापुरुषों को क्या अपनी निंदा प्रशंसा की परवाह, लेकिन साधक का तो अहित हो जाता है। उन महापुरुषों को निंदा प्रशंसा की परवाह नहीं होती, वो अपनी निंदा से डरते नहीं, डरते हैं तो महापुरुष बन नहीं पाते। तो साधक अवस्था में कितने हिलाने वाले प्रसंग सहे, मान अपमान सहा, साधक अवस्था में मान अपमान विरोध अपने नहीं चाहते, ऐसे सब प्रक्रियाओं से जब आदमी गुजरता है तब साधक में से सिद्ध बनता है। मैं नहीं चाहता हूं कि दाढ़ी मूछ रखूं, गुरुदेव कहेंगे दाढ़ी मूछ रखो, मैं चाहता हूं दाढ़ी मूछ हो तो गुरुदेव कहेंगे काटो। जयराम जी की। जिसमें हमारी ममता होगी वो तो तोड़ेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि पैंट और शर्ट पहनना छोड़ दूं लेकिन गुरुदेव बोलेंगे छोड़ो बदलो, अब मैं चाहूंगा कि नहीं पैरूं, गुरुदेव बोला इसी में रहो, जयराम जी की। तो जो जो मेरी पकड़े होंगी, गुरुदेव अगर कृपा करेंगे तो जहां जहां मेरी पकड़ होगी वहां ठोकर लगाएंगे। अगर श्रद्धा सात्विक होगी तो मैं अहोभाव से स्वीकार करूंगा, लेकिन श्रद्धा अगर तामसी या राजसी है तो मैं विरोध करूंगा, अंदर से विरोध करूंगा। इसमें क्या, आपकी पैंट और शर्ट बदल के धोती पहनने से भगवान का दर्शन होता होगा? नहीं, धोती पहनने से भगवान का दर्शन तो नहीं होता, लेकिन पकड़ छोड़ने से भगवान के दर्शन में सहाय मिलती है। श्री राम। उड़िया बाबा बड़े अच्छे महापुरुष हो गए, अभी तो ब्रह्मलीन हो गए, आनंदमय माँ, उड़िया बाबा और हरि बाबा तीनों मित्र संत थे समकालीन, और वर्षों तक साथ में रहे। आनंदमय माँ इंदिरा की गुरु, नेहरू जी भी उनको मानते थे। तो महाराज उड़िया बाबा जो थे, एक साधक ध्यान मग्न था, जाकर उसको हिला दिया बेवकूफ कहीं का, आश्रम में आया चुपचाप बैठा रहता है ध्यान करके, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान में बैठा रहता है। क्या आंख खोलने से तेरा भगवान भाग जाता है? आश्रम की सेवा करने से तेरा भगवान भाग जाता है? जा जरा खेती बेती कर। और दूसरा हल चला रहा था, उसको बुलाया, जब हल ही चलाना था तो घर में क्यों नहीं रहा? आश्रम में आया और फिर हल विद्या चालू कर दी इधर। हल ही चलाना था तो घर में तेरे हल था के? यहां था, तो फिर घर छोड़ के इधर आया और फिर इधर हल चला रहा है? बैठ, आंखें बंद कर, ध्यान भजन कर। जो हल चला रहा था उसको धमका के हल छुड़ा दिया, और जो ध्यान में था उसको धमका के ध्यान छुड़ा दिया। अब हल वाला ध्यान में सफल नहीं हो रहा है और ध्यान वाला हल में सफल नहीं हो रहा है। मित्र संतों ने कहा कि स्वामी जी, उसका विषय था हल चलाना, तो सेवा मिलती थी उसको वो करता, इसको ध्यान में रुचि थी। बोले रुचि तो बांधती है, मैं रुचियों से पार करके जहां से रुचियां अरुचियां सब ठीक ही लगती वहां पहुंचाना चाहता हूं। मुझे हड़ चलाना या बिठाना लक्ष्य नहीं है, मेरा तो जीव को जगाना लक्ष्य है। अब बताओ, ध्यान में मग्न हो रहा है, उसको हिला दिया, ध्यान छोड़ा दिया, और वो हड़ चलाने में मग्न है। लेकिन मग्न महाराज एक देश में एक वस्तु में हुआ, तत्व ज्ञान में, ध्यान में, एक जगह एक ध्यान की स्थिति भी तत्व ज्ञान के साक्षात्कार में बाधा है। जो ध्यान नहीं करते उनके लिए ध्यान जरूरी है, लेकिन ध्यान की किसी स्थिति में पड़े रहते हैं तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, साक्षात्कार नहीं होगा। इसीलिए गुरुओं की बड़ी ऊंची कृपा है, गुरुओं को बड़ी ऊंची निगाहें रखनी पड़ती है, गुरुओं को न जाने कितना कितना ख्याल रखना पड़ता है। आप लोग जब गुरु तत्व में पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि गुरु का कितना उत्तरदायित्व हो जाता है। गुरु बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जैसा तैसा आके गुरु बन गया, कन्या मन्या कुरु, तुम हमारे चेले, हम तुम्हारे गुरु। आज तो एवं गुरुओं नो राफड़ो फाट्यो, बधा बापू 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 थई हेड्या बधा। श्री राम। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि गुरु बनना माना अपने तपस्या के कोष में से कुछ न कुछ दान करना। आज हर भिखारी सहस्त्र हजारों अशर्फियां दान करना चाहता है, उसकी साधना का कोष तो होता नहीं उसके पास, उसके पास आध्यात्मिक कोष का खजाना पूरा भरा हुआ होता नहीं। कुछ थोड़ी बहुत सूचनाएं सुनकर, थोड़ी बहुत कथाएं वार्ताएं सुनकर सब गुरु बनने लग जाते। महाराज शुक्र ने हिलाया किसको? प्रहलाद को। जो पर्वतों से गिराने पर जिसकी श्रद्धा नहीं गिरी, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं गिरी, पानियों में फिकवाने से जिसके जीवन की रक्षा कर दी जीवनदाता ने, उस जीवनदाता के प्रति प्रहलाद को थोड़ा हुआ कि इन्होंने ये ठीक नहीं किया। जब इष्ट में लग जाता कि ये ठीक नहीं किया, तो क्या तुम्हारी श्रद्धा का ये प्रदर्शन है कि नहीं? मेरी भगवान में इतनी श्रद्धा, फिर भी मेरे बाप को मार डाला, ये तो अच्छा नहीं किया। बोले जब अच्छा नहीं किया तो ऐसे आदमी को जरा खबर पड़नी चाहिए कि क्या किया उन्होंने। बोले अब खबर मैं कैसे पाऊं, दो भगवान है, विष्णु है। बोले विष्णु किसको बोलता, व्हाट ऑफ मीनिंग द विष्णु, विष्णु भगवान का मतलब क्या होता है? बोले वासम करो थी वासुदेव, जो सब में बस रहा है वो वासुदेव है। बोले जो सब में बस रहा है तो फिर वो वैंकुंठ वाले को भी वासुदेव मानना बेवकूफी है कि नहीं? तेरे हृदय में भी तो वासुदेव है, तो हृदय के वासुदेव को मानना है कि वैंकुंठ के वासुदेव के आगे नाक रगड़ता है? बोले ये बात भी सच्ची है। बोले सच्ची बात है तो शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि जब तक पिता के हत्यारे को ठीक नहीं किया जाए तब तक पुत्र को खाना पीना विष है, हराम है, और तू मजे से राज्य कर रहा है, पहला तेरे जैसा है, इतनी अकल नहीं, हाउ करे चलिया, हाउ करे चलिया, हाउ करे, और हिप्नोटाइज कर दिया बेचारे को। बोले गुरु महाराज ऐसे तो मैं ठीक करना तो चाहता हूं, लेकिन अब क्या करूं, उनकी तो बड़ी पहुंच है, श्रद्धा तो मरी परवारी के, ठीक करना तो चाहता हूं लेकिन अब ठीक नहीं कर सकता हूं, श्रद्धा पूरी हो गई कि नहीं। महाराज प्रहलाद को जब राज मिल गया, इंद्रियों को छूट छाट दी, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण रजोगुण बढ़ गया, अब वो श्रद्धा की सात्विकता से नीचे उतर आया और बहकाने वाले मिल गए। बोले ऐसे तो मैं विष्णु को ठीक करना तो चाहता हूं लेकिन अब उसको तो वैकुंठाधिपति। बोले क्या है, आवाहन करो, पहले तो तेरे पास कुछ था नहीं, तू अनाथ था तो उसका सहारा ले लिया, अब तो तू राजा बन गया, इतनी फौज तेरे पास है, हिम्मत रख, अपने शास्त्रों में तो लिखा है निर्भय बनो, वो निर्भय जिन्होंने बनवाया है उन्हीं के साथ वो निर्भय तब फाइटिंग के लिए तैयार हो रही। ऐसे लोग बड़े अभागे होते हैं। ऐसे एक महिला थी जो सब कुछ छोड़कर घाट वाले बाबा के चरणों में पहुंच गई थी। दिल्ली में वो शिक्षिका थी, आचार्य थी, उसका नाम था पुष्पाबेन। उसने हरिद्वार में अपना मकान खरीदा क्योंकि गुरु महाराज के रोज दर्शन करना। ऐसे ज्ञानी के दर्शन सारे तीर्थों का फल, सारे यज्ञों का फल, सारे तपों का फल सहज में मिल जाए, ऐसे ज्ञानवान को ये दर्शन छोड़ के मैं दिल्ली में कब तक रहूंगी। मकान ले लिया, धीरे धीरे वो दिल्ली में से कुछ छुट्टियां लेकर आती थी रहती थी, और रिटायरमेंट जल्दी लेना था उसे। मैंने एक बार देखा कि वो खट्टी आम होती ना कैरी, काची कैरी, खट्टे आम के पकोड़े बना के आई। घाट वाला बाबा को बोलते, स्वामी जी लो, मैंने बड़े मेहनत करके पकोड़े बनाए आपके लिए, खाओ। उन्होंने कहा मैंने अभी दूध पिया है, दूध के ऊपर पकोड़े नहीं खाए जाते। बोले मैंने मेहनत करके बनाए उसका क्या, ये श्रद्धा है? श्रद्धे का चाहे मर्जी हो न हो, लेकिन तुम जैसा चाहो ऐसा श्रद्धे करे तो तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम्हारी नालायकी है?